ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। रसुआ की भोटे कोशी में आई बाढ़ के बाद अब तक 1351 लोगों के मिल चुके हैं शव। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र में सरकार ने सभी शक्तियों को परिचालित कर दी है, संचार मंत्री डॉ. तिमल सिन्हा का कथन। और इंडोनेशिया में अचानक काकराताओ ज्वालामुखी विस्फोट होने के कारण 712 उड़ाने हुई रद्द। अब समाचार विस्तार से। रसुआ की भोटे कोशी नदी में आई विनाशकारी बाढ़ में अब तक 1351 शव बरामद किए गए हैं। नेपाल पुलिस के अनुसार रसुआ में 163, नुवाकोट में 193, धादिंग में 69, चितवन में 362, गोरखा में 74, तनहू में 38, नवलपरासी पूर्व में 222 और नवलपरासी पश्चिम में 220 शव मिले हैं। इनमें से 1044 शवों का आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर अस्थायी रूप से सुरक्षित प्रबंधन किया गया है। शवों की पहचान के लिए मृतकों और उनके परिजनों के कुल 2376 डीएनए नमूने संकलित किए गए हैं। वहीं पहचान नहीं हो सके 1290 शवों का विवरण नेपाल पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। पुलिस के अनुसार बाढ़ प्रभावित 13104 लोगों का उद्धार किया जा चुका है, जबकि 4996 लापता लोगों की तलाश जारी है। पुलिस प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने, खोज एवं बचाव कार्य करने और बाढ़ से बाधित सड़कों को खोलने का काम भी कर रही है। सूचना तथा संचार मंत्री डॉ. विक्रम तिमल सिन्हा ने कहा है कि भोटे कोशी बाढ़ प्रभावितों के लिए राहत सामग्री और प्रबंधन में संसाधनों की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार राहत बचाव और पुनर्वास के काम को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र में सरकार ने सभी शक्तियों को परिचालित कर दिया है। मंत्री के अनुसार प्रभावितों के अस्थायी आवास के लिए स्कूल और अस्पताल की इमारतों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि दीर्घकालीन पुनर्वास की भी उचित व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में ऊर्जा और संचार सेवाएं जल्द बहाल कर दी गई हैं और नेपाल टेलीकॉम तथा एनसेल की सेवाएं भी शुरू हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ से बड़े पैमाने पर जनधन का नुकसान हुआ है और शवों का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन किया जा रहा है। सुरक्षा बल अब भी दिन रात राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। मंत्री ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को देखते हुए भविष्य में ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सतर्क रहने की जरूरत पर भी जोर दिया। रसुआ में भोटे कोशी नदी की बाढ़ में घायल 58 लोगों को उद्धार कर काठमांडू लाया गया था। इनमें से 50 घायलों को राष्ट्रीय ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया, जहां इलाज के बाद अब तक 38 लोगों को छुट्टी दे दी गई है। ट्रॉमा सेंटर में अभी 12 घायलों का इलाज चल रहा है। अस्पताल के अनुसार अधिकांश की हालत सामान्य है। बाढ़ में घायल और लापता लोगों के परिजनों को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए नेपाल पुलिस ने वीर अस्पताल और राष्ट्रीय ट्रॉमा सेंटर में नागरिक सहायता कक्ष भी स्थापित किए हैं। रसुआ की भोटे कोशी नदी में 10 भाद्र को आई बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों में से 244 शव त्रिभुवन शिक्षण अस्पताल महाराजगंज लाए गए हैं। अस्पताल के अनुसार इनमें से 161 शवों का अस्थायी प्रबंधन किया जा चुका है, जबकि 24 शवों की पहचान कर उन्हें परिवार और परिजनों को सौंप दिया गया है। अस्पताल में अभी 59 शव रखे हुए हैं। इनमें कुछ का पोस्टमार्टम होना बाकी है। पोस्टमार्टम के बाद इन शवों का भी आवश्यक प्रक्रिया के तहत प्रबंधन किया जाएगा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पानी से होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ने के बाद सरकार ने रसुआ में हैजा विरोधी वैक्सीन और दवाएं भेजी हैं। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मंत्रालय के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सहयोग से प्राप्त हैजा विरोधी वैक्सीन की 21,000 डोज रसुआ भेजी गई है। मंत्री निशा मेहता ने प्रभावित क्षेत्रों में हैजा और अन्य जलजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए दवा, वैक्सीन, स्वास्थ्य सामग्री और आवश्यक जनस्वास्थ्य सेवाएं तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। बाढ़ से पेयजल स्रोत और वितरण प्रणाली क्षतिग्रस्त होने के कारण बीमारियों का खतरा बढ़ा है। भोटे कोशी नदी में 10 भाद्र को आई बाढ़ से प्रभावित परिवारों को धूलीखेल अस्पताल एक वर्ष तक मुफ्त स्वास्थ्य सेवा देगा। अस्पताल ने बताया कि बाढ़ प्रभावित परिवारों पर स्वास्थ्य समस्या और आर्थिक बोझ बढ़ने को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य कार्यक्रम और सहयोग भी किया जाएगा। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु, हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। परराष्ट्र मंत्री शेष खनाल और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री छो ह्यून के बीच भुटेकोशी बाढ़ के बाद जारी खोज बचाव और राहत कार्यों तथा द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई। बैठक में बाढ़ में लापता दक्षिण कोरियाई नागरिकों की तलाश और बचाव के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। मंत्री खनाल ने कोरिया की ओर से उपलब्ध कराई गई मानवीय सहायता और राहत सामग्री के लिए धन्यवाद दिया। वहीं कोरियाई विदेश मंत्री ने नेपाल के पुनर्निर्माण और पुनर्वास में सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई। दोनों देशों ने जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर आवाज उठाने और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने पर सहमति जताई। सिंह दरबार स्थित संघीय संसद भवन परिसर में जिनजी शहीद स्मारक पार्क तथा प्रतिमा और स्तंभ का शिलान्यास किया गया। गृहमंत्री सुधन गुरुंग, बुनियादी ढांचा विकास मंत्री सुनील लमसाल और जिनजी शहीद परिवार कल्याणकारी समाज के वरिष्ठ सदस्य वासुदेव जोशी ने संयुक्त रूप से शिलान्यास किया। इस अवसर पर गृहमंत्री गुरुंग ने कहा कि सरकार जिनजी पीढ़ी की मांगों को संबोधित करने के लिए काम कर रही है। पृथ्वी राजमार्ग के कृष्णभीर में सड़क खोलने के लिए बनाए गए ट्रैक को चौड़ा करने का काम शुरू हो गया है। सड़क धंसने के बाद यातायात बाधित होने के कारण वैकल्पिक ट्रैक तैयार किया गया है। करीब 20 मीटर ऊंचाई और 350 मीटर लंबा ट्रैक बनाया गया है। सड़क परियोजना के अनुसार ग्रेडिंग, ग्रेवलिंग और भूस्खलन प्रबंधन का काम पूरा कर भाद्र के अंत तक यातायात संचालन का लक्ष्य रखा गया है। इस बीच तुइनखोला क्षेत्र में भूस्खलन रोकने के लिए नारायणगढ़ मुगलिन सड़क को कल सुबह से आंशिक रूप से बंद किया जाएगा। हालांकि वाहनों को समय समय पर आवाजाही के लिए खोला जाएगा। नेपाली कांग्रेस के सभापति गगन कुमार थापा और नेता डॉ शेखर कोइराला के बीच पार्टी की आंतरिक समस्याओं के समाधान को लेकर बातचीत हुई। बैठक में रसुआ की विनाशकारी बाढ़ और रसुआ, नुआकोट तथा धादिंग समेत प्रभावित जिलों की मौजूदा स्थिति पर भी चर्चा हुई। डॉ कोइराला ने कहा कि पार्टी की एकता बनाए रखने का कोई विकल्प नहीं है और इसके लिए वे हर संभव त्याग करने को तैयार हैं। जवाब में सभापति गगन थापा ने भी खुद को पार्टी एकता के पक्ष में बताया। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इंडोनेशिया के माउंट अनाक काक्राटोआ में आज जोरदार ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद राख का गुब्बार करीब 50,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया। राख के कारण अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों समेत 712 उड़ानें प्रभावित हुईं। फिलहाल किसी जनहानि की सूचना नहीं है। ज्वालामुखी की राख हवा के साथ तांगेरांग के सुए कर्नो हट्टा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक पहुंचने के बाद कुछ समय के लिए उड़ानें रोकनी पड़ी। सिंगापुर एयरलाइंस ने जकार्ता आने जाने वाली सभी उड़ानें रद्द कर दी, जबकि एयर एशिया ने कई उड़ानें रद्द या पुनर्निर्धारित की। इंडोनेशियाई अधिकारियों ने लोगों को सावधानी बरतने और राख से बचाव के लिए मास्क और चश्मे का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। अनाक क्राकाटोआ समेत इंडोनेशिया के 5 ज्वालामुखी फिलहाल अलर्ट लेवल 3 पर हैं। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बगर गालिबाफ ने चेतावनी दी है कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने वालों को अब पहले से अधिक तेज और दर्दनाक जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीमित जवाब का दौर खत्म हो चुका है और अब खेल के नियम बदल गए हैं। गालिबाफ ने दावा किया कि अमेरिका और उसके सहयोगी ईरानी सैन्य बलों के हमलों के बाद हताश हैं। उन्होंने कहा कि हालिया ईरानी हमले केवल शुरुआत है और आगे की जवाबी कार्रवाई और तेज होगी। गौरतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच शनिवार को जहाजों पर जवाबी हमले हुए। एक सप्ताह पहले लड़ाई शुरू होने के बाद ये हमलों का ताजा दौर है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.9 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रसुआ की भोटे कोशी में आई बाढ़ के बाद अब तक 1351 लोगों के मिल चुके हैं शव। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र में सरकार ने सभी शक्तियों को परिचालित कर दिया है, संचार मंत्री डॉ तिमल सिन्हा का कथन। और इंडोनेशिया में माउंट आना प्राकाटोआ में ज्वालामुखी विस्फोट होने के कारण 712 उड़ाने हुई रद्द। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।